बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको मेरा नमस्कार मिले। आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक होंगे और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने यीशु के द्वारा कनानी स्त्री के पुत्री को चंगा करना, 5,000 लोगों को खिलाना और लोगों को बीमारी से चंगाई देने व शिष्यों की धीमी समझ के बारे में देखा था। आज हम अपना अध्ययन अध्याय 16 से प्रारंभ करेंगे और हम इन खास विषयों पर ध्यान देंगे। यीशु का फरीसी और शास्त्रियों के साथ संघर्ष बना हुआ है। यीशु अपने शिष्यों से स्वीकृति की मांग करते हैं और समूह के लिए पत्रस बोलता है। पहली बार यीशु उनका सामना कलीसिया के साथ करते हैं, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान। तो आइए हम देखें कि सदूकी और फरीसी चिन्ह की मांग करते हैं। यह दूसरी बार है कि सदूकी और फरीसी स्वर्ग से कोई चिन्ह मांग रहे हैं और फिर से उन्हें योना के विषय में ही बताया गया है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 1-3 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे कहा, हमें आकाश से कोई चिन्ह दिखा। परंतु उसने उत्तर दिया, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और प्रातःकाल आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और डरावना है। तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो जानते हो, पर क्यों समय के चिन्हों को नहीं पहचानते। मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 38 पद में शास्त्री और फरीसियों ने चिन्ह मांगा था और उस समय प्रभु ने उन्हें योना का चिन्ह दिया था और वह फिर से वही करने जा रहे हैं। परंतु सबसे पहले वह उनके ध्यान को सत्य की ओर आकर्षित करते हैं। यद्यपि वे मौसम की जानकारी देने में बहुत अच्छे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि उस समय के चिन्ह को वे पहचान पाएंगे। वास्तव में धार्मिक अगुए यीशु को फंसाना चाहते थे और वह अपने लोगों को भी चेतावनी देने जा रहे हैं कि इन लोगों से सावधान रहे। यहाँ पर ध्यान दें कि वह दूसरी बार उन्हें पाखंडी कहते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उसे अन्य चिन्ह न दिया जाएगा। तब वह उन्हें छोड़कर चला गया। मित्रों, हमारे प्रभु ने उन्हें बहुत से चिन्ह उपलब्ध कराए, परंतु उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वह दूसरी बार योना के चिन्ह की भविष्यवाणी करते हैं। योनास यूनानी भाषा का नाम है जो इब्रानी में योना से है। पिछले अध्याय अर्थात 12:40 पद में उसने कहा था, क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात विशाल मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। ये सदूकी और फरीसी इसे चिन्ह के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, इस अध्याय में हम यीशु के विषय में 3 विचारों को देखेंगे। सदूकी और फरीसी उसे धोखेबाज समझते हैं और वे ये विश्वास नहीं करते हैं कि वह मसीह है। भीड़ यह सोचती है कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यिर्मयाह या कोई अन्य भविष्यवक्ता है। इसमें से प्रशंसात्मक है, यद्यपि वे चिन्ह को समझने में पूर्ण रीति से चूक गए हैं। उसके शिष्य तीसरे विचार को प्रस्तुत करते हैं। वे विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। सदूकी और फरीसी चिन्ह के लिए मांग कर रहे हैं, उन्हें भविष्यवक्ता योना को छोड़ दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तब वह उन्हें छोड़कर चला गया। यहाँ पर उसके प्रतिक्रिया में एक निर्णयात्मकता है, जैसे कि वह मुड़ता और उनसे दूर चला जाता है। तब वह अपने शिष्यों को इस खमीर मिले धार्मिक अगुओं से सावधान रहने की चेतावनी देता है। हम आगे देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 5 से 7 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर चेले उस पार पहुंचे, परंतु वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, वह इसलिए कहता है क्योंकि हम रोटी नहीं लाए। मित्रों, हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में देखा था कि खमीर हमेशा एक बुराई का सिद्धांत है और कभी भी अच्छाई का सिद्धांत नहीं है। प्रभु कहते हैं कि खमीर से सावधान रहना। यदि आपको किसी बात के लिए सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है तो यह कोई स्वागत या अच्छे के लिए नहीं होता है। यीशु के शिष्यों ने पहली बार में खमीर को समझने में चूक कर दी। उन्होंने सोचा कि यह रोटी है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 8 से 12 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु यीशु ने यह जानते हुए कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों आपस में विवाद कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब भी नहीं समझते या स्मरण करते कि जब 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां थी तो तुमने कितने टोकरे उठाए थे, और 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने कितने टोकरे उठाए? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा था, पर यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों तथा सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। मित्रों, यदि यह रोटी की बात थी तब तो शिष्यों को उन दो चमत्कारों को स्मरण करना चाहिए था जिसमें उसने 5,000 और 4,000 लोगों को खाना खिलाया था। परंतु यह मात्र रोटी की ही बात नहीं थी। हमारे प्रभु की व्याख्या के अनुसार खमीर एक झूठा सिद्धांत है या वह है जो बुरा है। जब लोग सुसमाचार के खमीर के बारे में बोलते हैं तो वे विरोधाभास शब्द का उपयोग करते हैं। खमीर कभी भी सुसमाचार की तस्वीर में नहीं है। खमीर हमेशा ही दुष्टता का प्रतीक है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को एक अधिकारी के रूप में स्वीकार करते हैं तो खमीर क्या प्रस्तुत करता है, उसे एक बार और हमेशा के लिए ही स्पष्ट कर देना चाहिए या उसे स्पष्ट हो जाना चाहिए। यीशु अपने स्वयं को स्वीकृति के लिए बुलाते हैं। मित्रों, इस पूरे मत्ती के सुसमाचार में हमें अपने सोचने की क्षमता को चालू रखना है, क्योंकि यह सुसमाचार बाकी के पवित्र वचनों के लिए विशेष कुंजी है। हमें ध्यानपूर्वक इसका भेद करना है और ध्यानपूर्वक देखना है कि यह क्या होता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है, लोग क्या कहते हैं? मित्रों, यदि आप मानचित्र को देखेंगे तो आपको 3 कैसरिया मिलेंगे। कैसरिया फिलिपी गलील झील के उत्तरी क्षेत्र में है। प्रभु यीशु उत्तर में है। वह ऐसी स्थिति में है जहां से वह मुड़ने और यरूशलेम की ओर जाने और क्रूस पर चढ़ने को सीधे एक गति देने जा रहे हैं। इससे पहले कि वह अपनी यात्रा आरंभ करें, 2 मुख्य बातें हैं जो उनके शिष्यों के मस्तिष्क में स्पष्ट होनी आवश्यक है। पहला, वह कौन है, और दूसरा, वह क्या करने जा रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, ये 2 बातें हैं जिसे हम सबको मसीही होने के लिए स्पष्ट होना अर्थात इसको जानना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना है कि वह कौन है और हमें जानना है कि उसने क्या किया। हमें इन बातों को जानने की आवश्यकता है ताकि हम अपने विश्वास को जांचें और बचाए जाएं। हमारे प्रभु के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, मनुष्य का पुत्र कौन है, लोग क्या कहते हैं? यही वह प्रश्न है जिसे वह आज भी पूछ रहे हैं और यही एक प्रश्न है जिसका आज हमारे दिनों में भी उत्तर दिया जाता है। आज भी वह बहुत ही विवादपूर्ण व्यक्ति है जो कभी इस पृथ्वी के ऊपर रहा है। अब हम भीड़ के विचारों को सुनेंगे, भीड़ जो उसका अनुसरण कर रही थी। मैं यह विश्वास करता हूं कि यदि मैं या आप अपने नगर के चौराहों पर खड़े होकर यही प्रश्न लोगों से पूछें तो संभवतः हम भी उसी प्रकार के उत्तर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज भी लोग उसके बारे में संदेह में हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने कहा, कुछ तो यहूना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह और कुछ यर्मियाह अथवा नबियों में से एक। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक महान व्यक्ति था और लोग इसी रीति से उसे पहचानते थे। हमारे दिनों में आज बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु एक महान शिक्षक थे। कुछ लोग यीशु के विषय में कहते हैं कि वह इलिया है। इलियास यूनानी भाषा में है और इब्रानी में यह इलिया है। निश्चित तौर से इलिया एक महान व्यक्ति था और आज हमारे दिनों में भी लोग हैं जो यीशु को एक महान व्यक्ति कहते हैं और दूसरे उसे यिर्मयाह कहते थे। फिर से यूनानी शब्द का प्रयोग हुआ है। यिर्मयाह रोने वाला भविष्यवक्ता था और लोगों ने हमारे प्रभु को रोते हुए देखा। भीड़ ने उसे एक महान भविष्यवक्ता होने का पद दिया अथवा नबियों में से एक। मैं मानता हूं कि यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार के अनेकों दृष्टिकोण लोगों के मन में थे कि वह कौन सा भविष्यवक्ता थे, और यही विचार उस समय के अधिकतर लोगों के थे। एक बार एक जवान प्रचारक ने मेरे इस संदेश को सुना जो बहुत ही स्पष्ट बोलने वाला था, और वह सड़क पर जाकर आने जाने वाले लोगों से यही प्रश्न पूछने लगा कि यीशु मसीह कौन है। उसने कई प्रकार के विचार सुने। किसी ने कहा कि वह एक महान शिक्षक था, उसके जैसा संसार में अभी तक कोई नहीं हुआ है। एक ने कहा कि वह धर्म का संस्थापक था। दूसरे ने महसूस किया कि वह एक अच्छा व्यक्ति था, और दूसरे ने उसे अन्य लोगों के साथ रखा जो इतिहास में प्रचलित थे, सिर्फ भविष्यवक्ताओं में से एक। अब यीशु अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, जिसे हम मत्ती अर्चित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मित्रों, अब शिष्यों के सामने समय आ गया है कि वे एक निर्णय लें और अपनी स्वीकृति को प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से शमौन पत्रस सबों की ओर से प्रवक्ता था। उसने कहा, तू ख्रिस्ट है, जिसका मतलब है मसीह, अभिषिक्त किया हुआ, वह जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, और प्रभु यीशु उस भविष्यवाणी की पूर्ति थे और जीवित परमेश्वर का पुत्र भी। मित्रों, इस समय तक यह सबसे अच्छी स्वीकृति थी और सबसे ऊंचा सम्मान जो उसे दिया जा सकता था दिया गया, और यही है जो यीशु है। हम मत्ती अर्चित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मित्रों, केवल पवित्र आत्मा ही मसीह के बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी दे सकता है। आज कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु नहीं पुकार सकता है, परंतु केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा ही है जो मसीह की बातों को लेकर उन्हें हम पर प्रकट करते हैं। यीशु ने कहा, मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ रहने के द्वारा से नहीं सीखे हो। मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूं कि यदि मैं 3 साल यीशु के साथ होता तो मैं उसे अवश्य जानता कि वह कौन है। अब तक शिष्य उसके साथ 2.5 साल तक रह चुके थे। क्या आप जान सकते थे? मेरे प्रिय मित्र, आप आज भी उसे उतना ही जान सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को उसे आपके लिए वास्तविक बनाता है। हम मत्ती अर्चित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मित्रों, आइए हम इस पद को ध्यानपूर्वक देखें। किस चट्टान पर यीशु ने अपनी कलीसिया बनाई? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यह शमौन पत्रस था जिस पर कलीसिया बनी। ठीक है, पर वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का कुछ खेल है। यूनानी की मूल भाषा में पेट्रास मतलब तू पत्रस है, चट्टान का एक छोटा टुकड़ा, और इस चट्टान पर सुदृढ़ आधार मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कुछ लोग हैं जो यह मानते हैं कि मसीह शमौन पत्रस की स्वीकृति पर अपनी कलीसिया बना रहे हैं, पर मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। चट्टान कौन है? चट्टान मसीह है, और कलीसिया मसीह पर बनी है। हमारे पास शमौन पत्रस का अपना वर्णन इस प्रकार है। वह पहला पत्रस की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में यीशु को इंगित करते हुए लिखता है, अब वह जीवित पत्थर के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है। और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 28 अध्याय और उसके 16 पद को भी हम याद करते हैं। देखो मैं सियोन में एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, हाँ नींव के लिए एक बहुमूल्य कोने का पत्थर दृढ़ता से रखने पर हूं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह न डगमगाएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 6 पद में हम इसे देखते हैं। कलीसिया मसीह पर बनी और वह उसकी नींव है। पहला क्रंथियों 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मसीह पत्थर है और वह कहता है कि वह इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाएगा। जब प्रभु ने यह कहा उस समय यह भविष्यकाल में था, इसलिए कृपया आप मुझे यह न कहें कि पुराने नियम में कलीसिया थी, क्योंकि कलीसिया तब तक अस्तित्व में नहीं आई जब तक कि मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण नहीं हुआ और पवित्र आत्मा को नहीं भेजा गया। मित्रों, जब तक ये सब घटनाएं नहीं घटती तब तक कोई भी कलीसिया नहीं होती, अर्थात नहीं हो सकती थी। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यह भविष्य काल था। यहाँ पर अधोलोक के फाटक मृत्यु को दर्शाते हैं। यूनानी भाषा में नरक के लिए अधोलोक या हेडे शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराने नियम का अधोलोक शियोल अदृश्य संसार को दर्शाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु। अधोलोक के फाटक मसीह की कलीसिया के विरोध में प्रबल नहीं होंगे। मित्रों, इन दिनों में प्रभु स्वयं स्वर्ग से एक ऊंची आवाज के साथ नीचे आएंगे और वह पुकार एक महादूत के पुकार के जैसे होगी और तुरही फूंकने की तरह, क्योंकि जो मसीह में मरे हैं उन्हें जी उठना है। मृत्यु की फाटक उसकी कलीसिया के विरुद्ध प्रबल नहीं होगी। हम मत्ती सुसमाचार उसके 16 अध्याय और 19 पद में पढ़ते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्ग राज की कुंजियां क्या है? क्या वो सिर्फ शमौन पत्रस को दी गई है? जी नहीं, यीशु उन सबको देते हैं जो पत्रस की तरह स्वीकृति देते हैं, वे जो मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपके पास भी कुंजियां हैं, जैसे कि दूसरों के पास हैं। ये कुंजियां शास्त्रियों को मिले हुए अधिकार के चिन्ह थे, जो शास्त्र को लोगों के लिए समझाया करते थे या उसका अर्थ बताया करते थे। आप देखें नहेमिया 8 अध्याय उसके 2-8 पद तक। आज प्रत्येक मसीही के पास शास्त्र है और इसलिए कुंजी भी है। यदि हम वचन को रोके रहते हैं तो हम उसे पृथ्वी पर बांधते हैं। यदि हम वचन बांटते हैं तो हम पृथ्वी पर उसे खोलते हैं। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत कलीसिया के पास कुंजियां नहीं है जो सभी अन्य विश्वासियों का बहिष्कार करे। आज हमारी जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि केवल यही लोगों को बचा सकती है। यह एक अद्भुत प्रकाशन है। इन बातों के लिए कौन सक्षम है? आपके पास और मेरे पास जो जिम्मेदारी है वह वास्तव में विस्मयकारी है। मित्रों, हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब उसने चेलों को चेतावनी दी कि वे किसी से न कहें कि मैं मसीह हूं। प्रभु ने यह निवेदन इसलिए किया क्योंकि सिर्फ वह कौन है उसके बारे में ज्ञान रखने से आप उधार नहीं पा सकते हैं या बच सकते हैं। उधार पाने के लिए आपको उसे जानना आवश्यक है कि वह कौन है और उसने क्या किया है, और उस पर विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार करना है। आगे हम देखते हैं कि यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। पहली बार यीशु अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। यह लगभग उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के 6 महीने पहले की समय की बात है। उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा करने में इतना लंबा समय क्यों लिया? वास्तव में उनके शिष्य इसके लिए तैयार नहीं थे। यहां इस समय तक भी वे अपनी प्रतिक्रिया से न्याय को दिखा रहे थे। उसने 5 बार इस सत्य को दोहराया है कि वह यरूशलेम मरने के लिए जा रहा है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 12 पद, 17 अध्याय उसके 22-23 पद, 20 अध्याय उसके 18-19 पद, 20 अध्याय और उसके 28 पद में देख सकते हैं। इस प्रगाढ़ निर्देश के बावजूद भी शिष्य इसके अभिप्राय को समझने में तब तक असमर्थ रहे जब तक कि उसका पुनरुत्थान नहीं हो गया। मित्रों, हम मत्ती 16 अध्याय उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं, उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। मित्रों, प्रभु यीशु ने यही कार्य आपके लिए और मेरे लिए भी किया। यही सुसमाचार है कि मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मरे, गाड़े गए और फिर भी तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आपको जानना आवश्यक है कि वह कौन है। आपको जानना है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। यदि आप इन दो बातों को जानते हैं और विश्वास के द्वारा विश्वास करके उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप उद्धार पाते हैं। ये बातें निकोदिमुस को छोड़कर पहले कभी भी प्रकट नहीं की गई थी, जो प्रभु ने सेवकाई के आरंभ काल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 1-16 पद में दी थी। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। इस पर पत्रस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होने पाए। मित्रों, सारांश में पत्रस ने कहा, आप मसीह हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्रूस पर नहीं जा सकते हैं। शिष्यों के विचार में क्रूस बिल्कुल ही नहीं था, जैसा कि आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है। तब उसने मुड़कर पत्रस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मित्रों, जो कोई भी सुसमाचार के सत्य का कि यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और मृतकों में से जी उठा का इनकार करता है तो यह शैतान की ओस से है, अर्थात यह शैतानी है। जब मनुष्य वेदी पर इन सत्यों का इनकार करता है, मित्रों, हमारे बदले में मसीह का मरना ही हमें उद्धार दे सकता है। बाद में पत्रस ने लिखा, जिसे हम पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 24 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। मेरे प्रिय मित्रों, क्या ही अद्भुत परिवर्तन पत्रस के मस्तिष्क में हुआ है। हमारे प्रभु ने पत्रस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। इसकी कल्पना कीजिए कि यहाँ पर पत्रस है जिसके माध्यम से परमेश्वर का आत्मा कह सका कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, और फिर अगले ही क्षण में उसने शैतान को उसे धोखा देने दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। मित्रों, बहुत से लोग इस पद की व्याख्या इस प्रकार से देते हैं, उसे अपने लिए आइसक्रीम से इनकार करना चाहिए या उसे अपने आरामदायक वस्तुओं से इनकार करना चाहिए। यह पद क्या कहता है कि वह अपने आप से इनकार करे। आप इसे पहले से जानते हैं कि इस संसार में सबसे कठिन व्यक्ति अपने आप से इनकार करने के लिए आप ही हैं। मेरे लिए दही चीनी को छोड़ना काफी कठिन है, परंतु अपने आप से इनकार करना भी वास्तव में कठिन ही है। अपने आप से इनकार करना स्वयं को तस्वीर से बाहर करना है और स्वयं के स्थान में मसीह को रखना है और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। हमें मसीह के क्रूस को उठाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने क्रूस को उठाना है। आपके लिए और मेरे लिए क्रूस है और वह है यदि हम उसका अनुसरण करने जा रहे हैं। तब मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 25-27 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ, अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मित्रों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने के लिए कोई खतरे की उम्मीद नहीं करता है तो उसके आने वाले समय में वह हमेशा के लिए अपने जीवन को खो देगा। इसका दूसरा भाग भी बिल्कुल सच है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में सब हिसाब किताब बराबर कर दिए जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपना सही इनाम प्राप्त करेगा। मित्रों, हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां खड़े हुओं में से कुछ जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ न देख लें, मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। मित्रों, यह पद अध्याय 17 से जुड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह का रूपांतरण यह विवरण देता है कि जब उसने यह कथन कहा तो उसके कहने का मतलब क्या था। मित्रों, यहाँ पर हमारे आज का अध्ययन समाप्त होता है और अगले अध्ययन में हम इसे अध्याय 17 से आरंभ करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उसे जान सकें कि वह कौन है, और उस पर विश्वास करें और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु आप सबकी सहायता करें ताकि आप अपने जीवन में शांति और प्रेम को पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तुमको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने टोको उन्हें, न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें, न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे।